बीच अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या कर पाओगे? कल कहा ना बाबा ने थोड़ी सा रूप से पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते तो अलबेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो, अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? तो बाबा कह रहे हैं सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, हर चीज सहज हो। अगर कोई भी चीज करने में बहुत पुरुषार्थ और बहुत खेचातान हो रही है, खींच खींच के पकड़ पकड़ के कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ तो, क्योंकि बाप ऐसा योग तो सिखाएगा नहीं कि जिसमें बहुत ही मुश्किल हो। अगर वैसा हो रहा है, लग रहा है, तो क्या समझना चाहिए? बहुत ही खेचातान चालू है। अच्छा, योग सीखना बाकी है। जैसे किसी को वैराग आता है तो संसार में बार बार अपने को याद दिलाते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। बार बार अच्छा लग रहा है संसार पर, जगत मिथ्या जगत मिथ्या, थोप रहे ऊपर से ये संसार मिथ्या है, परंतु फिर आकर्षित कर रहा है, फिर आकर्षित कर रहा है। ऐसे खेचातान जबरदस्त एक युद्ध की स्थिति है, संघर्षमय अवस्था है, कि जिसमें बार बार शास्त्रों में लिखा है संसार मिथ्या है, संसार है ही नहीं, पर दर्द हो रहा है तो है, खाने की कुछ कुछ इच्छा हो रही है तो है, ये चाहिए वो चाहिए तो है, और फिर से मन को याद दिला रहे संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये ऐसी एक अवस्था है युद्ध की। वैराग जो भी चीज है, वैराग है चाहे ईश्वरीय प्रेम है, वो कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही आ जाए। और संपूर्ण ज्ञान जब होगा तो ये स्वतः ही आ जाए। जैसे वो बैलगाड़ी चलती है तो उसके पीछे क्या कहते हैं उसको, उसके चिन्ह उमड़ते हैं वहां पे पहिए के, वो स्वतः ही होते हैं। तो जहां ज्ञान और विवेक है उसके पीछे वो स्वतः ही उमड़ेगा, वैराग स्वतः ही आएगा। सब कुछ अध्यात्म में जिसकी भी आवश्यकता है वो स्वतः ही आए, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण विवेक की आवश्यकता है। जहां कल्टीवेट करना पड़े, उसको लाना पड़े, और बहुत ही खेचातान चल रही है तो जरूर विधि में कहीं ना कहीं, जैसे किसी का दिखाता है ना वो, कोई कौन सा साधु है पता नहीं, कि जो लकड़हारा है, जो अपने मन में बहुत वैराग के विचार है, उसने बस जितनी लकड़ियां काटता है उतना धन कमाता है, कोई सेविंग कुछ नहीं, बस आराम से चैन से मस्ती से रात में सोता है, शास्त्र पढ़ता है और अपने अंदर वैराग धारण करता है कि संसार मिथ्या है, और एक आध्यात्मिक जीवन जीता है। तो कभी बारिश हो गई तो कई दिनों तक उसे ये नहीं मिले, लकड़ियां नहीं मिली, तो दिखाते हैं वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है जंगल से, भूखा प्यासा, तो अचानक उसको दिखता है एक थैली है जिसमें कुछ सोने की सिक्के हैं, आधे गिरे हुए हैं आधे अंदर है, पत्नी पीछे से आ रही है। उसको लगता है मैंने तो इसे देख लिया, पर भाई इसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया तो मैं तो वैरागी हूं, मुझे तो पता है ये जो अशर्पिया ये जो सिक्के है इसका कोई महत्व नहीं है, जीवन से तो मुझे वैराग है, धन आ जाएगा बहुत सारा तो ये हो जाएगा, जीवन में तो लोभ उत्पन्न होगा और ईश्वर के मार्ग में तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये सोचते रहता है वो और उसको ढकने की कोशिश करता है। तो और ये भी सोचता है कि ये फिर भी तो स्त्री है, स्त्री का मन पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया है, भूखे है, तो डावाडोल हो सकता है, आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, मोह उत्पन्न हो सकता है, तो फटाफट उसे ढकने की कोशिश करता है। तो उसकी पत्नी कहती है क्या कर रहे हो, तो अभी झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसके प्रिंसिपल के विरोध में है, क्योंकि झूठ कैसे बोले, तो वो बोल देता है उसको कि मैं तो इसको ढकने की कोशिश कर रहा था कहीं तुम्हारे मन में मोह ना उत्पन्न हो जाए। तो उसकी पत्नी कहती क्या तुम्हें अभी तक वो सोने सोने की सिक्के अभी तक दिखते हैं, अभी तक सोना तुमको दिखता है, तुम मिट्टी से मिट्टी ढकने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ जो है वैराग कल्टीवेट किया जा रहा है, वो जो वैराग है उसमें वो सहज है, उसे कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहती है तुम मिट्टी से मिट्टी ढक रहे हो, जो भी थोपी हुई चीज रहती है वो ज्यादा समय नहीं टिकती है, इसके लिए वो संपूर्ण ज्ञान की जो अवस्था है वही संपूर्ण वैराग की अवस्था है। संपूर्ण ज्ञान जहां है वहां सारी धारणाएं स्वतः ही आ जाएगी, बहुत सारी प्रतिज्ञा है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है। जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो स्वतः ही जो चीजें नहीं चाहिए वो गिर जाएगी, वो स्वतः ही छूट जाएगा जो नहीं चाहिए। जैसे सूखे पत्ते होते हैं झाड़ से गिर जाते हैं, वो कब गिरते झाड़ को भी पता नहीं चलता, ना ही उन पत्तों को पता चलता है, इतना सहज गिर जाते हैं सारे। जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो मोह है, वो स्वतः ही गिर जाएगा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्योंकि ज्ञान हमको कहता है केवल अविनाशी की तरफ ले जाता है, जो भी विनाशी चीजें हैं उनकी तरफ से स्वतः ही वैराग हो जाएगा। आज की मूली में भी बाबा ने कहा है, धक्का लग जाता है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है पूरा अभी तक। ड्रामा में जिसका जितना पार्ट है वो इतना ही पार्ट हो जाएगा, तुमको धक्का लगने की जरूरत नहीं है, तुमको दुखी होने की, रोने की दरकार। निकल भी कहा था, अगर मोह है तो दुख होगा, अगर लगाव है तो दुख होगा। तो दुख का कारण, रोने का कारण दुख, और दुख का कारण लगाव और मोह। तो बाबा हमको सहज योगी जीवन जीना, सहजता हो जिसमें, वो सहजता तभी आएगी जब ज्ञान बढ़ेगा, नहीं तो केवल संघर्ष। बाबा कुछ कह रहे, बाबा कहते संसार को देखते हुए नहीं देखो, हमको दिख रहा है, और फिर बाबा की बातें याद आ रही कि उसने नहीं देखने को कहा, पर हम देख रहे, उसने नहीं कहा है हम कर रहे, श्रीमत ये कहती है हम ये कर रहे। संघर्षमय जीवन है पूरा, जीवन ही 10 वर्ष 20 वर्ष हो गए पर संतु संघर्ष से छूटे नहीं। बाबा ने कहा ये ऐसा पर हम वैसे, तो अंदर में एक अपराध बोध, एक आत्मग्लानी का भाव, और यही आत्मग्लानी आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि वो कह कुछ रहा है हम कर कुछ रहे। वो सहजता अभी तक आई क्यों नहीं, चिंतन वो है। बाबा कह रहे सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, योग भी कैसा सहज, उसमें भी खेचतन नहीं। तो सहज बात हो, जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है। वो दिखा है उसकी पत्नी ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, ना ही वो कल्टीवेट कर रही है, ना ही वो कुछ करने की प्रयत्न कर रही है, ना उसके मन में संघर्ष है कि यही सत्य है और ये सत्य नहीं है। सहज ही ज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो असार लगने लगा है संसार। पर तुम तो क्या करते हो, असार बातों को क्या करते हो, मूर्ति बनाते हो असार बातों की। कल का वरदान दिया था, जो असार बातें हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल अभी तक खेलते रहते हो, जो असार बातें हो उसमें प्राण भरते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो, मूर्ति बनाते हो, और फिर बाप के पास जाते हो, बाप की याद से स्व उन्नति की लहरों में बीती सो बीती कर उसको डुबोते हो। तो मूर्ति बनाना, उसकी पूजा करना और फिर उसको डुबोना, ये टाइम वेस्ट है। स्मृति से, समर्थि के वरदान से इस खेल को बंद करो। या कभी कभी मुश्किल होता है, योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि द्वापर युग से हम योग सीख रहे हैं, कई आत्माओं ने आके योग सिखाया, किसी ने हाथ पैर क्या क्या करना सिखाया, किसी ने कहा एक पैर पर खड़े हो जाओ, किसी ने कहा ये आसन करो वो आसन करो, किसी ने कहा यम नियम आसन प्राणायाम करो प्राणों को रोक दो, ऐसे ऐसे मार्ग सिखाए योग के सब लोगों ने, हठ योग सिखाया। तो क्या भगवान आकर भी वही सिखाएगा कि अब तक तो मेहनत की, अभी और ज्यादा मेहनत करो, अभी वो कम थी अभी और ज्यादा करनी पड़ेगी तुमको, वो तो कभी कभी था अभी निरंतर करो। तो उसने जो योग की विधि सिखाई है वो कुछ और होनी चाहिए, वो मुश्किल नहीं सिखाएगा कभी। तो मुश्किल क्यों करते हो, अच्छा लगता है मुश्किल, या मुश्किल से ही प्यार है? मुश्किल करते करते जो कठिन है उससे ही जटिल है, उसमें ही सहज मिल गया तो लगता है ये शायद इतना ठीक नहीं है, ऐसे होता है क्या? मुश्किल चाहिए। जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तब मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी ना, तो कमजोरी आने क्यों देते हो, बच्चे किसके हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो या मास्टर कमजोर, क्या कहते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या? चेकिंग ठीक नहीं, चलते चलते कहा ना कहा किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहा भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलापन अनेक प्रकार से आता है, सबसे रॉयल रूप का अलबेलापन कौन सा है? पुरुषार्थ कर रहे हो जाएगा, चल रहे, समय बहुत है, और
कौन पहुंच
कौन पहुंचा है? महारथी भी ऐसे है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा समय पर करके, जरूर करके दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते। समय हमारी रचना है। फिर भी कहा था ना, हम रचता है मास्टर, रचता हम है, वो रचना है हमारी। परिस्थितियां कहो या देह कहो या समय कहो, ये सब रचनाएं हैं। प्रकृति कहो, ये सब रचना है, हम मास्टर रचता है। तो स्वयं पर आधार नहीं रखते, इसके लिए अलबेले हो जाते। तो आप कौन हो? अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी हो? सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। कल तो भी विश्व कल्याणकारी की परिभाषा में बाबा ने तीसरा पॉइंट क्या कहा था? ऑलराउंडर, अथक, एवर रेडी और निरंतर। तो एवर रेडी होता सदा तैयार, विनाश का बिगुल बजे चलो तो कहेंगे चलो। वो गीत है ना, कौन सा गीत है? चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। वो क्या कहती है उसमें, आगे क्या है गीत में? हम है तैयार चलो। वो ये नहीं कहती कि मैं आती हूँ, देखती हूँ, रुकती हूँ, तुरंत तैयार है। किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ जमा नहीं करना है, किसी से कोई हिसाब किताब नहीं। बस अभी अगर इसी समय विनाश हो गया तो बस चलो, अभी इसी समय, राइट नाउ। कुछ देखना नहीं है, कुछ किसी से मिलना नहीं है, किसी को फोन नहीं करना है, तुरंत। कोई मैसेज नहीं भेजना है व्हाट्सएप पे, मैं जा रहा हूं, अलविदा। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। एवर रेडी मतलब सदा तैयार। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, संपन्न हुए हो? नहीं तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। तो कितना टाइम चाहिए एवर रेडी तो होना? अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय बाप के और कोई है क्या? तो क्यों तैयार होना है? तो क्या तैयार होना है? एक बाप दूसरा ना कोई, यह तो तैयारी है ना। फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक की तरफ मनमनाभा हो गए, तो एवर रेडी हो ना, कोई मेहनत नहीं। कल भी बाबा ने कहा था, बहुत सारे काम अगर है तो मुश्किल है। टीचर मैंने को कहा था ना, एक ही काम है, गृहस्थी का काम पास, फिर भी दो काम है, दो को संभालना पड़ता है। आपको तो एक ही, एक बाप और एक बाप के प्रति सेवा, तो एक सहज एक रस हो सकते हो। अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज होता है। एक से निभाना सहज है, अनेकों को निभाना, अनेकों से निभाना मुश्किल है। जब एक बाप की तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही है पुरुषार्थ। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप याद, तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है माया, एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होता जाएगा, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति में रखो कि है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो डैश जरूर है, क्या है? बिन। अगर वन बाप है तो विन जरूर है, विन विन विन।
बीजा
सहज योगी हो ना, सहज योगी। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके, और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। तुम्हारा सबसे पहला भक्त कौन है? माया, क्योंकि सबसे पहले वही तुम्हें नमस्कार करेगी। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा ही जहां बाप है वहां विजय है ही। कल्प कल्प के विजयी है, अभी भी है और सदा रहेंगे। है स्मृति ना, कितनी बार विजयी बने हो? तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर से करना है, उसमें क्या मुश्किल है? भले कितनी बार भी हम गिर गए, हार हो गई, परंतु ये सदा याद रहे कि हम विजयी थे, हम ही विजयी है और हम ही विजयी रहे। चाहे किसी संस्कार से हमारा युद्ध है, चाहे किसी आदत से हमारा युद्ध है, चाहे किसी एडिक्शन से हमारा युद्ध है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उस एक कमजोरी और उस एक बुराई की वजह से हमारी बार बार हार हुई, परंतु अल्टीमेट विजयी हम ही हैं, हमने ही उसको जीता था, ये भूलना नहीं है। कितनी बार भी भरे हम गिरे हो, नई बात तो नहीं है ना, तो नशे से कहो, कौन सी बात नशे से कहो,
अनगिनत बार विजयी बने,
अनगिनत बार विजयी हुए, और
विजय
हम
हमारा
नहीं बनेंगे तो और
जन्मसिद्ध
कौन
अधिकार,
बनेगा, और
विजय हमारा जन्मसिद्ध,
नशे से कहो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और
हम नहीं तो और कौन बनेगा,
हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा, इसकी हिम्मत है हमारे सिवा बनने की, और हम किसके बच्चे हैं, विजय हुई पड़ी है। बाबा कहते हम सहयोगी नहीं होंगे तो कौन होगा, भट योगी सहयोगी होंगे क्या, जो पैर को इधर डालते हैं और एक पैर पर खड़े रहते हैं, जो शीर्षासन करते हुए योग करते हैं, क्या वो योगी बनेंगे या हम। ऐसा नशा है सभी के मस्तक पर, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर नोंदी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है उसको कितना बड़ा, उसका कितना बड़ा भाग्य। आज भी वरदान में कहा कि वरदाता ही तुम्हारे हाथ में है, वरदाता ही तुमको मिल गया है, अभी क्या चाहिए, अनगिनत। वहां तो 1 का लाख, यहाँ तो अनगिनत, जो चाहो जितना चाहो जब चाहो, जो चाहो जितना चाहो जब चाहो तुम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वरदाता ही तुम्हारे पास है, बीज ही तुम्हारे पास है,
बंधा हुआ है,
वो सर्वंट है, सर्वंट के रूप में
बंधा
भी
हुआ
बंदरा
है,
बंधा हुआ है, तो ले लो अभी जो चाहिए। कभी बाबा ने कहा इस समय भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है, साकार महावाक्य है, इस समय भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। लोग भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और तुम्हारी मुट्ठी में इस समय भगवान जो हाजिर है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो, और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म की नहीं है, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आप साथ, आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले क्या कहते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, और तुम कैसे आए थे, भरपूर होके आए थे,
नहीं भाग्य लेकर आए थे, फिर भरपूर हो गए जाएंगे।
सतयुग में हम भरपूर होकर आए थे, और संगम पर जाएंगे तो भी, ये पूरे कल्प की बात का आना जाना अगर देखे तो, वहां पर भरपूर होकर आए थे और भरपूर होकर जाएंगे। यहाँ जब अलौकिक जन्म हुआ, अलौकिक जन्म, तब आते ही बाबा ने बहुत सारे वरदान और बहुत सारे गिफ्ट और क्या क्या दे दिए, सौगात क्या क्या बहुत कुछ दे दिया। तो जन्म लेते ही भरपूर होके जन्म लिया, और जब यहां से जाएंगे संगम से तो भी भरपूर होके जाएंगे। दुनिया वाले कहते थे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा कहते हो, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे, भरकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। क्या क्या भरकर जाएंगे यहां से, ज्ञान गुण शक्तियां और दुआए पुण्य संस्कार, दैवी संस्कार, 16 कला संपूर्ण, ये निश्चय है ना। भाग्य का अनुभव करते हो, अनुभव ये अनुभव कि हमसे भाग्यशाली और कोई नहीं। अगर बाबा कहे कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन, तो सबसे ऊंचा हाथ हमारा उठना चाहिए, सभा में उसको दिखाई दे वो दिख रहा है, उसका सबसे ज्यादा भाग्य, हाथ सबसे ऊंचा, कोई दो दो, कोई तीन तीन हाथ उठाएंगे, तभी अनुभवी है ना। तो इसी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो, अनुभवी तो हो और बढ़ाओ उसको, ज्यादा से ज्यादा लालच होना चाहिए अनुभव को, ग्रीड कि और ज्यादा अनुभव, और ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो, और आगे बढ़ू, और ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी करू, इसका लालच। स्मृति रखना, माना पढ़ना बढ़ाना, स्मृति का तिलक लगा रहे तो सब कुछ हो जाएगा, याद रहे। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसका है ही नहीं। बाबा पहले क्या करता है, 3 स्टेप, पहले क्षमा कर देता है, बुराई और कमजोरियों को देखता नहीं, दिल पर नहीं रखता, समा लेता है, क्षमा करता है। सेकंड स्टेप महिमा करता है, महिमा से महान, तुरंत शिक्षा नहीं देता है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी की गलती देखा कि फर्स्ट स्टेप है हमारा उसको सिखाना कि भाई ये गलत है। कोई देखा कि योग चालू है और कोई योग में नींद कर रहा है और बहुत ही मधुर संगीत निकल रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले इसको सिखाए, शिक्षा दे। बाबा का शिक्षा सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप हमारी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट बच्चे आगे है बाप से। हम चाहते हैं कि दूसरों को जल्दी से जल्दी ठीक करे, किसी ने कुछ गलती करते हुए दिखा तो तुरंत हम चाहते हैं कि उसको यहाँ के नियम और यहाँ की मर्यादाएं तुरंत सिखा दे, और वो भी उसके लिए हमें अपना वर्षों से की हुई कमाई, योग तपस्या, हमारी शांति की स्थिति, उसको भी खोने के लिए हम राजी होते हैं उसको सिखाने के लिए। अगर शांति स्तंभ पे कोई चप्पल पहनकर अंदर चला गया तो हृदय में इतनी हलचल हो जाती है कि जन्म जन्म से हमने जो, जब से यहाँ आए और तब से हमारे हृदय में जो शांति है, जो योग से जो पावर अर्जित की है, वो सभी खोने को हम राजी होते हैं। पहले उसको सिखाए कि तुम चप्पल पहन के अंदर कैसे गए, क्या तुमको यहाँ के नियम पता नहीं, कि टीचर बहन ने तुमको सिखाया नहीं, कैसे कर सकते हो तुम। कितना हमारे अंदर ये रहम भाव है कि जो हम तुरंत उसको ठीक करना चाहते हैं। फर्स्ट शिक्षा, पर हम में और बाप में अंतर क्या है, उसकी फर्स्ट स्टेप है बुराइयों और कमजोरियों को समा लेता है, दिल में नहीं रखता है, क्षमा करता है। फर्स्ट, सेकंड स्टेप है उसकी महिमा करता है, ये वही तो कर रहा है। आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ, भाग्य से ऊंचा भाग्य किसी का ही नहीं है। फिर महिमा करता है, अपने वास्तविक स्वरूप में देखना उसको, पहले हल चलाता है एक अच्छे किसान की तरह, उमंग उत्साह और हिम्मत का हल चलाता है, फिर बीज डालता है तो सफलता होती है। हम क्या करते हैं, कलराटी जमीन पर बीज डालते हैं, सफलता कम, समय ज्यादा और मेहनत भी बहुत। कितनी एनर्जी हमको, ऊर्जा हमारी जो अर्जित की हुई है सुबह की, वो निकालनी पड़ती है किसी को ठीक करने में, करेक्ट करने में। और जब तक हम उसको बोल ना देंगे कि भाई तुमने ये गलत किया, इधर शांति नहीं मिलती। शांति थी पहले, अभी शांति खोली, अभी वापस शांति का अनुभव, एक थोपी हुई झूठी शांति, फिर वापस शांति के लिए पुरुषार्थ, और फिर योग में संघर्ष। फिर जब भी वो दिखता है तो वो ऐसी नजर से हमारी तरफ देखता है और हम भी देखते हैं उसकी तरफ, पता नहीं क्या होता है फिर दोनों आत्माओं में। एक रूहानी प्यार हमेशा के लिए रह जाता है दोनों के बीच, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है। एक बार ऐसे जब मंजू बहन सुबह मुरली सुना रही थी, मेरे सामने दो कुमार बैठे थे, तो पहले एक सो गया, तो एक सो गया तो दूसरों को इतना गुस्सा आया, उसने उसको ऐसे ऐसे किया एक दो बार, पर वो उठा नहीं। फिर उसको जोर से हिला के और कहा उधर ध्यान रखो, ऐसे। फिर 15 मिनट के बाद जिसने उठाया था वो सो गया। अभी इसकी बारी थी बदला लेने की। मौका मिल गया, अभी इतना क्रोधित इससे, अभी उसको जगाया, तुमने मुझे जगाया था, तुम उठो उधर ध्यान दो।
दोनों
एक दूसरे के शुभ चिंतक। हमारी फर्स्ट स्टेप है शिक्षा, तुरंत शिक्षा। बाबा की फर्स्ट स्टेप है पहले कमजोरी और बुराई को क्षमा, फिर महिमा करेगा, वो बहुत सारी महिमा करेगा। तुम ये हो, तुम वैसे हो, किसी को ये ना कहो कि तुम कमजोर आत्मा हो, कमजोर है पर परंतु कहो नहीं उसको। ये है रहम दिल, रहम दिल की शक्ति से उसे परिवर्तित करो बाबा ने कहा। रहम दिल की शक्ति से उसके अवगुणों को खुद धारण नहीं करो पर उसको परिवर्तित करो। रहम दिल किन आत्माओं के लिए, कम बुद्धि वाली आत्माओं के लिए, कड़े संस्कार वाली आत्माओं के लिए, ग्लानी करने वाली आत्माओं के लिए, आलोचना निंदा करने वाली आत्माओं के लिए, पतित अज्ञानी आत्माओं के लिए, और ज्ञान में ब्राह्मणों में पुरुषार्थहीन आत्माओं के लिए। रहम दिल, ये सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप है इशारे से शिक्षा देना, वो भी इशारे से, इशारे से दो या सीधा भी शिक्षा दो, पर हमें जल्दी इतनी है, हमको, हम बाबा से भी आगे जाना चाहते हैं,
टाइम
हमारे पास कम है। बाबा के लिए इतना, पहले उसकी महिमा करो और उसको माफ करो, ये टाइम हमारे पास नहीं। हम डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते हैं, इंस्टेंट ताबड़तोब। और उसका क्या होता है फिर, सफलता कम। समय वेस्ट, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसका है ही नहीं। अभी क्या नवीनता करेंगे? नवीनता है कम समय में ज्यादा सेवा कर सफलता प्राप्त करना, कम समय में ज्यादा सफलता। उसके लिए क्या करेंगे? ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक के आवाज से अनेक सहज बाप के समीप आ जाए। ऐसी आत्मा किसी को तैयार करो। बाप दादा ने कहा है ना, अभी माइक तैयार करो जिसका आवाज बुलंद हो, तो ऐसी आत्माओं को तैयार करो। अच्छा।